ಕಾಮಧಂಬಿತ್ವಾಂ ಅಹಿಂಸಾ ಶಾಂತಿರಾಯವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯ ಮನ ಅಹಂಕಾರೈವ ಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನ ಆಸಕ್ತಿರ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಗ ಪುತ್ರದಾರಾಗ್ರಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂ ಚಾಸಮಚಿತ್ತಿತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪಾತಿಷು ಮಯಿ ಚಾನನ್ಯಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರಭ್ಯಾವಿಚಾರಣೆ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ರತಿರ ಜನ ಸಂಸಿದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನಂ ನಿತ್ಯಾತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತು ಅನ್ಯತಃ ವಿನಮ್ರತಾ ದಂಭಹೀನತಾ ಅಹಿಂಸಾ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಸರಳತಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಗುರು ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾನ ಪವಿತ್ರತಾ ಸ್ಥಿರತಾ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕೆ ವಿಷಯೋ ಕಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಕಾ ಅಭಾವ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ತಥಾ ದುಃಖ ದೋಷೋ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಘರ ತಥಾ ಅನ್ಯ ವಸ್ತುವೋ ಕಿ ಮಮತಾ ಸೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಚ್ಛಿ ತಥಾ ಬುರಿ ಘಟನಾಂ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾವ ಮೇರೇ ಪ್ರತಿ ನಿರಂತರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ರಹನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಜನ ಸಮೂಹ ಸೆ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಿ ಮಹತಾ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರನ ತಥಾ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಕಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಖೋಜ ಇನ್ ಸಬ್ಕೋ ಮೈ ಸಾರೆ ಬೋಲೋ ಇನ್ ಸಬ್ಕೋ ಮೈ ಜ್ಞಾನ ಘೋಷಿತ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಔರ್ ಇನ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ವಹ ಸಬ್ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ಬೋಲೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ವಾಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಮೋರ್ ಮುಕುಟ ಬನ್ಸೀ ವಾಲೆ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಾರು ಪೂರೇ ಸಂಸಾರ ಕೋ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಪಾ ಸೆ ಹಮ್ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಔರ್ ಇನ್ಕಾ ಅನುವಾದ ರೋಜ್ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಇಸ್ಮೇ ಕಹಾ ಹೈ ಕಿ ಯಹಿ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ಔರ್ ಇನ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ವಹ ಸಬ್ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ತೋ ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಹರಿಭಕ್ತೋ ವ ಮಾತಾಓ ಯೇ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಾನ್ ನೆ ದಿಯಾ ಹೈ इसको हम सबने जीवन में धारण करना है, ऐसा बनना है। ऐसा क्यों बनना है? ऐसा से ये बनना है कि हमने परम शुद्ध भगवान को मिलना है, श्री कृष्ण को मिलना है। श्री कृष्ण को मिलने के लिए ये बातें हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। तो ये बातें अगर हमारे जीवन में नहीं होंगी फिर हम कृष्ण भगवान से नहीं मिल सकते। फिर हम किसको मिलेंगे? आवागमन को, 84 के चक्र को और यमदूतों को, यमदूतों को मिलेंगे। यमदूत एक प्रार्थना की है भगवान से एक हिंदी भजन में, जब कंठ प्राण आए कोई रोग नाशता है। हे प्रभु, हे गोविंद, हे कृष्ण, जब मेरे प्राण यहां पर पहुंच जाए मुझे कोई रोग ना हो, क्योंकि हम वृद्धावस्था में सब रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। कोई रोग ना हो, क्योंकि रोग होंगे, रोगों का चिंतन होगा, गोविंद का चिंतन नहीं होगा, कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। अच्युत खड़ा हो जा, मुझे कोई रोग ना हो, कोई रोग ना सताए और यम दर्शन ना दिखाए। ये प्रार्थना की है भगवान से कि यमों के दर्शन मुझे ना हो, उनके इतने भयानक रूप हैं कि उनको देख के ही मल मूत्र का त्याग हो जाता है। तो कई घटनाएं घटती हैं, जिन लोग कई लोगों ने यमदूतों को देखा होता है, यमदूतों को लोग देखते हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूं राजस्थान की। राजस्थान बड़ा अच्छा प्रदेश है, आज भी बड़े, मतलब पूर्व काल में आज भी बड़े भक्त हैं वहां पर, बड़े बड़े अच्छे भक्त हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो वहां पर गर्मियों के दिन थे, एक यवन मुसलमान वो जा रहा था, पद यात्रा कहीं जाना होगा उसको, जा रहा था तो एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया, थोड़ा मैं आराम कर लेता हूं। पेड़ के नीचे वो बैठ गया, उसने क्या देखा, जिस सड़क से वो आया था उस सड़क से दो यमदूत आ रहे हैं। यमदूत बड़े भयानक होते हैं, उनके टेढ़े मेढ़े शक्लें बड़े डरावने होते हैं, उनसे डर जाता है जीव, घबरा जाता है। तो दो यमदूत आ रहे हैं, वो घबरा गया और मुसलमान भाई घबरा गया, सोचने लगे मुझे लेने आ गए, कांपने लग पड़ा वो। लेकिन उसके पास आके कहते हैं, नहीं तेरे को लेने नहीं आए हम। तो कहता है फिर वो, देखो एक बैलगाड़ी आ रही है। हाँ, एक बैलगाड़ी दूसरी तरफ से आ रही थी, उसमें जो आदमी मालिक उसका है ना, उसको लेने आए हैं। उसके देखते देखते यमदूत बैलगाड़ी की ओर हो लिए और यमदूतों ने बैलगाड़ी में प्रवेश, बैलों के अंदर प्रवेश कर दिया, बैलगाड़ी में नहीं, बैलों के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे किसी के अंदर भूत का प्रवेश होता है तो वो अंडशंड बातें बोलता है, भूत बोलता है उसके अंदर से। तो वो बैल जब यमदूतों का प्रवेश उनमें हुआ तो पागल पागल हो गए, इधर उधर भागने लगे। भागने लगे जब तो जो मालिक का बैलगाड़ी का वो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, उल्टा गिरा। अभी यमदूत अपना बैलों के अंदर है और बैल घूम के बड़े बड़े सींग हैं बैलों के, वो उसको मार देंगे, मारना उसके प्राण निकाल लें। यमदूत जब उसको मारने के बैलों के माध्यम से सींग ऐसे किए पर मारा नहीं, उसके देखते देखते फिर उन दोनों बैलों में से यमदूत बाहर निकले और उसकी तरफ आ गए, उस मुसलमान भाई की तरफ आगे, और फिर उसके पास खड़े हुए। उसने पूछा, भाई तुम लोग उसको लेना था, आप क्यों नहीं लिया, और बैलों के अंदर आपका प्रवेश हुआ और फिर आप जो है मारने लगे, फिर नहीं मारा। देखो ये घटना इसलिए घटती है ताकि हम मूर्खों को कुछ अकल मिले, हम लोग यमदूतों से बच सकेंगे। ये सब प्रभु की कृपा है। तो यमदूत उस मुसलमान भाई को कहते हैं, असल बात ऐसी थी कि वो आदमी जो है वह तुलसी के एक पेड़ पर जा गिरा, वहां तुलसी का पेड़ था, तुलसी का स्पर्श उसको हो गया। तो हमारे स्वामी जो यमराज हैं उनका हमें आदेश है, जिसका स्पर्श तुलसी से हो उसको ले जाना मेरे पास। कंठी इसलिए धारण की जाती है, तो इसलिए हम जो हैं जा रहे हैं वापस। तो उसने सब अपनी आंखों से घटना देखी मुसलमान भाई ने, और राजस्थान जयपुर छोड़ते हो वृंदावन आ गया, और उसने सारे शरीर पर तुलसी लपेट दी थी यमदूतों के भाई से, और वृंदावन ही रहा वो, और वृंदावन ही शरीर छोड़ा उसने। तो आप देखो कि कहने का अभिप्राय उसने देखा, कई लोगों ने यमदूतों को देखा, कई घटना है। एक पुस्तक है परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, वो मिलती है पुस्तक नहीं, वो अभी मिलती है, वो पुस्तक पढ़ो, सारे परलोक की घटनाएं उसमें बताई हैं। हमारे पास आया वो देखे उसको ना, उसमें रखो, गोकुल में रखो। तो सत्य बताई, घटनाएं बताई हैं उसको, कई घटना, कई लोग मरते जिंदा होते हैं। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करें। क्यों दर्शन करें? ताकि इनसे हम बच जाएं। इनसे कैसे बचेंगे? केवल कृष्ण बचा सकते हैं भाई। ये बड़े डरावने हैं, बड़े व्यावाह हैं, तो बस हमने भक्ति करनी है भगवान, कृष्ण के शरण में आना है। भगवान की माया इतनी प्रबल है, माया में लोग पड़े हुए हैं, और जिस काम के लिए उसको भेजा था वो काम नहीं वो कर रहा। किस काम के लिए भेजा था? कहा कि आया था हरि भजन को, किस लिए आया था? लेकिन हुआ क्या? मीठे लागे दाम, पैसा बड़ा अच्छा लगा, पैसा बना रहे चौंक ले जा रहे साथ में। केवल भाई भाई को मार देता है पैसे के लिए, पकड़े जाते हैं फिर। हमारे नेता लोग कितने पैसे घोटाले कर रहे हैं, अरबों खरबों के घोटाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सब ले जाएंगे बेचारे साथ में कसाते में। आदमी माया जब भक्ति नहीं करता तो पाप कर्म करता है, दो ही बातें हैं, या प्रकाश है या अंधकार है। जो भक्ति नहीं करता वो अंधकार में है, पाप कर्म करता है। तो कहा है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य के समान है और माया जो है ये अंधकार है, अंधेरा है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। यहां कृष्ण भगवान है वो कृष्ण भगवान कैसे हैं जो भक्ति के द्वारा, अपनी ये बातें जो पढ़ी हमने इनको जीवन में धारण करने के द्वारा। कृष्ण आके हमारे हृदय में निवास करते, कृष्ण तो वैसे हमारे हृदय में है ही, परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में, लेकिन अभी हमें उनकी कोई अनुभूति नहीं है, हमने उनको देखा नहीं। कारण हम संसार में माया जाल में खोए हुए हैं। हम दुनिया में खोए हुए हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पा रहे। इसलिए जीवन का उद्देश्य है आत्मदर्शन, आत्मा को देखना। अभी देखो आत्मदर्शन के बारे में प्रभुपाद समझाते हैं, जब सूर्यदेव निकलते हैं सूर्यदेव को देखने से हम अपने आप को भी देख सकते हैं, अंधकार में हम अपने आप को नहीं देख सकते। आत्मदर्शन होने से परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो इस काम को, आत्मदर्शन के काम को प्राथमिकता दो, इस काम को सबसे आगे रखो। इस काम को ऐसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में नेगलेक्ट, इसका इसको ऐसा ढीला मत लो, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, पछताना पड़ेगा। जैसे को भजन है ना, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अरे भले मान सके तुम अभी नहीं समझा ना, तुम्हें रोना पड़ेगा और नरक में तुमको गर्क होना पड़ेगा, नरक में तेरी हालत बड़ी खराब हो जाएगी, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा भाई, जो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है, इतना कष्ट है, इतना कष्ट। एक बार उधर हम विदेश में थे अफ्रीका में, एक हमारे घर सिर खराब हो इंग्लैंड का भक्त था नारविंदम गुरु भाई का माना, तो हम कहीं जा रहे थे तो बच्चे भी थे वहां अफ्रीकन बच्चे, अफ्रीकनों में प्रचार कर रहे थे, तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो गाड़ी ऐसे बीच में खड़ी करके चला गया और बच्चों को बोला कीर्तन करो सब, तो पुलिस का को बड़ा अफसर आ गया अफ्रीकन अफसर, कौन है बोला ड्राइवर तो गया बुलाया, उसने पूछा भी तूने गाड़ी यहां क्यों खड़ी की, ऐसे उल्टे सीधे जवाब देने लगा उसको, वो बंद कर उसको जेल में, जेल में बंद कर दिया उसको। उसको जब पूछने लगे तेरा नाम क्या है, कहता मेरा नाम क्या है, मैं जी बांटना हूं, मूर्ख वाले जवाब मैंने ठीक ना जवाब दे उसको, पुलिस वाले को बंद कर दिया। अब फिर मैंने पुलिस वाले को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई गाड़ी चलाने वाला और कोई नहीं है वही था उसको छोड़ो, बड़ी मुश्किल चार पांच घंटे उसको अंदर रखा। जब बाहर निकला कानों को हाथ लगाने लगा, इतनी गंदगी, इतनी बुरी हालत है क्योंकि बार बार कह रहा है, थोड़े चार पांच घंटे रहने दें उसका बोलती बंद हो गई। जेल बड़ी दुखदाई, कहने जी जेल में जो डालते हैं चोरों को बड़ी हालत खराब होती है। तो नर्क बहुत दुखदाई है, यमदूत बहुत दुखदाई है। अभी जो जेल में गया वो बता रहा कितना कष्ट है वहां पर, कितनी तकलीफ है। हमारे पास ये भी चोर था, उसको भी पकड़ा गया, वो चोरी करता हुआ। कहां वो चोर गया नहीं है, कई चोर है ना, वो चोरी करते हैं, कहीं तो चोर है कहीं डाकू है। तो डाकू को तो जेल में रखा, जेल में रखा तो कहते वहीं अपना रहने का, वहीं टट्टी पेशाब रखा तो रोटी दी उसको, पता तो कहते कहते शुद्धि नहीं ले जाऊंगा, नहीं कहा लगा भूखा मरने वहां पर। चोर को सुधारने का बस यही रास्ता है, मैं कहते रहो फिर वो चोरी करना नहीं छोटा, मैं भेजे तेरे को कि नहीं नहीं अभी संभाल नहीं संभाल। दुर्गति हो गई उसकी, कुछ दिन रखा उनको। तो इसी प्रकार यमदूत बहुत कष्ट देने वाले हैं और नर्क बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। तो संदेश यह कि नर्क में जाने से बचो, वो हमें कृष्ण भगवान ही बचा सकते हैं। अगर ऐसे संतों की कृपा से अगर हम भक्त बन जाते हैं, भक्ति मां का आश्रय ले लेते हैं, भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम भक्ति मां की कृपा से, कृष्ण कृपा से नर्क में जाने से हम लोग बच सकते हैं। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं, कोई देवी देवता नहीं बिता सकता हमको। महादेव ने क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्कारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं हमको, हमको कह रहे हैं मूर्ख, मूल मते मूर्ख, मूर्ख गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो क्यों भजना गोविंद को, क्या कह रहे हैं महादेव, कहते तेरा बार बार जन्म हो रहा है और बार बार तेरी मृत्यु हो रही और बार बार तू मां के गर्भ में आ रहा है, मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, बड़ा कष्ट है मां के गर्भ में, बहुत कष्ट। ओहो गर्भ योनि बड़ी दुखदाई, बार बार तू कष्ट भोग रहा है। ऐसा इस संसार का दुष्कर प्रभाव है, यह संसारे बहुत दुष्कर है। तू कृपाई पारे पाही मुरारी, भगवान की कृपा को ले ले। शंकर भगवान जो है महादेव है, सारे देवताओं में बड़े हैं, वो ये कहेंगे। लेकिन हम शंकर भगवान के पास जाएंगे, हे महादेव मैं आपके पास दस पैसे चढ़ा रहा हूं या चढ़ा रही हूं, महादेव आपके भंडार तो भरे हैं, आप मेरे को ज्यादा नहीं तो 10 लाख का फायदा कर देना बस। महादेव कहते कहता मूर्ख क्या मांग रहा मेरे से, और खुद महादेव भक्ति में लगे रहते हैं, महादेव बैठे रहते हैं समाधि में भजन करते हैं बस। महादेव भजन करते हैं और हम उनसे भजन भक्ति में अभी देखो, उनसे भजन भक्ति मांगो, शंकर भगवान कृपा करो मुझे भक्ति दे दो। अभी माता दुर्गा के पास लोग आते हैं, क्या मांगते हैं? धन देही, पुत्र देही, घर देही, बार देही, ट्रक देही, कार देही, है मत देही 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 मांगते मांगते। अरे जो प्रारब्ध में होगा मिलेगा। माता से भी मांगो, मां भक्ति दे दो। माता का एक रूप कात्यानी माता से गोपियों ने भक्ति मांगी। गोपियों ने कहा मां हम पर कृपा करो ताकि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। शंकर भगवान से भी भक्ति मांगो, खुद ही कह रहे हैं भक्ति करने के लिए। ब्रह्म जी भी कह रहे हैं भक्ति करो। गोविंद जी गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, ब्रह्म जी कह रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हे कृष्ण आप परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण, मैंने सोचा था कि मैं नियंता हूं, ब्रह्मा जी सोचने लगी है। परीक्षा ली थी भगवान की, बड़ी ग्लानी हुई उनको कि मैं क्या कर दिया। अरे कृष्ण को ब्रह्मा जी नहीं पहचान सकते, हम और आप क्या पहचानेंगे। लेकिन अगर भक्ति का सहारा ले लेते हैं, भक्ति मां की कृपा से कृष्ण मिल जाते हैं। बाहर कोई रास्ता कृष्ण स्वयं भी जागे। भगवान ने 18वें अध्याय में क्या कहा? पहले भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राज योग, भाट योग, संख्य योग, कई योगों का वर्णन किया। योग का अर्थ है कि हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ें। लेकिन बड़ी कृपा करके भगवान ने बोलो अति कृपालु परम दयालु कृष्ण चंद्र भगवान की। क्या कहा परम कृपालु भगवान ने? भक्त्या मामा विजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं वो भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। खुद कह रही 9वें अध्याय में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, 9वें में कहा मन मना पव मद भक्तो मध्यादी माम नमस्करू मामे वेश श्रीयुक्ता वेव मत्मान मत्परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे प्रायण हो जाओ। ऐसा करने तो मुझे प्राप्त करो। खुद कह रहे कितनी कृपा है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर उनकी ठगनी माया के पीछे पड़ जाते हैं। ठगनी माया हमें ठग रही है। माया ने कईयों को ठगा, हम न ठगाए। भक्ति मां का आश्रय में जो संसार में ही लोग जो सुख के पीछे पड़े हैं ना, भौतिक सुखों के पीछे, भौतिक भोगों के पीछे, ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये भौतिक सुख भोग 4 दिन की चांदनी और बाद में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, नरक है, बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, इनको देखो, ये आ रहे हैं आपके लिए भी, मेरे लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, गोरे के लिए भी, काले के लिए भी, सबके लिए आ रहे हैं, सबके लिए ये आ रहे हैं। इसलिए इनके दर्शन करो और बस जल्दी से कृष्ण की शरण में आ जाओ। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। हे कृष्ण आओ थोड़ा डोरी सौंपने का अभ्यास करें, ठीक है? मुझे थोड़ी तकलीफ है इसलिए मैंने यहां से पकड़ कर रखा, दबा के रखता हूं, थोड़ा फर्क रहता है तो दर्द होती है। हाथ खड़े करो ऊपर, दोनों हाथ खड़े करके ऊपर ताली बजानी है आपने और मेरे पीछे बोलना है दीना बंधु दीनानाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीना दास मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीना दास दीना बंधु दीना दास बोलो दीना बंधु भगवान की। भगवान के दो नाम हैं, दीन बंधु जो पति थे उनके भगवान मित्र हैं और दीना नाथ दीनों के नाथ भी हैं, संग भी हैं। बस उनके हाथ में जीवन की डोरी हृदय से संपनी है। अभी हमने अपनी डोरी मन को सौंप रखी है, मन को सौंप रखी है, मन जो कहता है वो हम करते हैं। गुरु जी कहते हैं भाई मंदिर में रहो, भजन करो, टाइम थोड़ा है, परिवार के कुछ लोग चले गए, पति चला गया, बेटी चली गई, लेकिन मेरा मन घूमने फिरने में कहता है घूमे फिरूं थोड़ा सा। देखो कैसी मोह माया है। अरे भजन करो, जो पत्थर पत्थर कहते हैं ना, रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, जो पत्थर घूमता है ना नदी में उस पर काई नहीं जमती, ऐसे जो घूमता रहता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। भजन टाइम थोड़ा है लेकिन नहीं चिंता, जहां जाना है वहां जाना है। ये सब हमने भगवान के हाथ में जीवन की डोरी नहीं सौंपी, मन के कहने पर चलते हैं। और ये तो नर्क में ले जाने में थोड़ा हुआ, हमको बड़ा बदमाश है मन, इसका पूर्ण प्रयास हमको नर्क में ले जाने का। ये दूषित हो गया ना बुरे कर्मों के कारण। बुरे कर्म क्या? इंद्रियों का तर्पण, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित है, यही बंधन है, यही नर्क है। जीवन काल में यही काम करते रहे हम, विषय विकारों में पड़े रहे, इंद्रियों के तर्पण में पड़े रहे, तो मन बड़ा दूषित हो गया, मन गंदा हो गया। अभी कई हमारे भक्त कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, मां बाप कहते हैं कि इसको समझाओ शादी नहीं करना। मां बाप क्यों बच्चे की शादी करना चाहते हैं? कहते हैं बेटा हमने शादी की, तुम पैदा हुए और भी काम किए, भ्रूण हत्याएं भी की, कई बच्चे मार दिए, हमने ज्यादा नहीं रखे और हमें लग रहा हम तो नर्क में जाएंगे। बेटा हम तो नर्क में जाएंगे, तू भगवान के पास क्यों जाए? तू भी शादी कर और ऐसा ही कर, तुम भी हमारे पीछे पीछे वहीं आना नर्क में। इसलिए अपने बच्चों की वो शादी करते हैं। जब भाई तुमको कुछ नहीं मिला, कहां वो गंगोत्री जा रहा है? हाँ नहीं जा रहा तो बैठ कर क्या कर दिए? ट्रेन में कल पकड़ लेना है क्या, थोड़ा चार जब उधर नहीं जा रहा है रोके जा थोड़ा बैठ। तो आप देखो जो खुद बंधन में फंसा है, प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी बहुत बड़ा सेठ बन गया, बड़ा पैसा, बड़े बच्चे, सब परिवार, सब कुछ किया, भजन नहीं किया, भजन नहीं किया, कृष्ण के शरण में नहीं आए, मन में शांति नहीं हुई, अशांत है। किसी बड़े सेठ को पूछो तुम शांत हो? नींद नहीं आती रात में, पैसे रुपये करोड़ों रुपये हैं उसके पास। तो पर लेकर लड़कों को भी बहुत वही काम करवाता है जो जिसमें से उसको कुछ नहीं मिला। अरे भय मान से अगर तुम्हें सुख शांति नहीं मिली तो लड़कों उनको भक्त बना। भावना पीछे यही है कि अगर हमारा कल्याण नहीं हो तो लड़कों का क्या हो? लड़के भी वहीं जाएंगे हम जा रहे हैं, हम तो जाएंगे नर्क में, लड़के पीछे पीछे वहीं आएंगे, वहीं पास बातचीत करेंगे फिर। जैसे एक आदमी जो है मर गया था, यमदूत पकड़ के ले गए थे उसको, ऐसे ही था। तो यमदूत ने पूछा उसको, भाई तुम यमराज ने पूछा, यमराज के पास यमदूत ले गए, कहते तुम कहां का है, बताया उसने। उसने बताया मैं पलवल का हूं। पलवल में भी ले जाते हैं यमदूत लोगों को, ले जाते हैं ना, कहते पलवल का। कहते कि तू पलवल का साल, पलवल के लोग बड़े चतुर होते हैं, तू बड़ा चतुर है, बता वहां तूने उल्टे सीधे। अच्छा, यमराज ने चित्रगुप्त को कहा, तो चित्रगुप्त जी इसका हिसाब देखो। चित्रगुप्त ने कहा हमारे हिसाब क्या देख रहे थे, ये तो पलवल से आया है। कहते रोज एक मोटा मोड़ता थे, मोड़ते हैं मुर्गे पलवल में नहीं, मुर्गों की तो दुर्गति ये सब जगह है। कहते हमारे एक रोज मुर्गा मरोड़ता था और अंडे तोड़ता था और बकरे भी मरोड़ता था और शराब भी रोज चाहिए इसको, बुरे कर्म करता था, लेकिन गलती से एक पुण्य से हो गया है। चित्रगुप्त ने हिसाब देखा, सब हिसाब लिखा जा रहा है सभी का, एक पुण्य हो गया। अच्छा फिर कहते हमारा लंबा नरक है इसको और थोड़ा सा स्वर्ग है। पूछा भाई तो पलवल से आया, पलवल के लोग बड़े चतुर होते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तो तू बता भाई पहले थोड़ा समय स्वर्ग फिर लंबा नर्क, या पहले लंबा नर्क फिर स्वर्ग। जैसे पलवल के लोग बड़े अकलमंद है, कहता है जी मुझे दोनों दिखा दो पहले, फिर निश्चय करूंगा मैं कहां जाना है। या बना जाएगा जब पलवल से आ जाए दिखा दो उसको तुम्हें। यमदूत ने कहा दिखाया उसको, नर्क दिखाया, तो क्या दिखाया, कोई शराब पी रहा है, कोई मुर्गे मरोड़ रहा है, कोई अंडे तोड़ रहा है, कोई बकरे मरोड़ रहा है, बुरे कर्मों में लोग लगे हैं। कहते हैं यार मैंने तो सोचा पलवल में ये काम होते हैं, यहां भी होते हैं, वो काम यहां भी है, तो मौज है, बढ़िया काम। स्वर्ग देखा उसने तो स्वर्ग में शांति सा बढ़िया, स्वर्ग नहीं ठीक में। यमराज ने पूछा भाई कहां जाएगा, तो महाराज नर्क ही ठीक है, वहां भेजो मैं। जब नर्क में ले गए उसको आदमी को, जब जो पकड़ करके जाते उल्टा टांग दिया, लगे मार लिया उसको, लगे उसके डी बस लिए कर लिया। जब मार लगे कहते ये क्या कर रहे हो, कहते क्यों, कहते मुझे दिखाया खाना पीना और मार रहे हो मेरे को, मैं तो खाने पीने वाला आदमी हूं, मैं तो बकरे मरोड़ने वाला और अंडे तोड़ने वाला और मुर्गे मरोड़ने वाला हूं, मुझे बोतल चाहिए रोज की। तो यमदूतों की शक्ल बड़ी भयानक थी, बड़े लंबे लंबे दांत निकाल कर यमदूत कहते हैं जो हमने तेरे को दिखाया था ना, वो हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट था, नर्क की एडवर्टाइजमेंट थी, और बेटा भी तेरे साथ यही इकट्ठी होगी तेरी, तो नर्क के कुछ एडवर्टाइजमेंट पलवल क्या है, सब लीला हो गई है। उधमपुर में पर एक आध कसाई की दुकान होती थी, मार्केट होनी है, इतना मांस खाना बढ़ गया, इनको पता नहीं थी यम दो दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यम दो दिन की दुर्गति कर देंगे, लेकिन इनको समझ नहीं है। तो एक और ऐसा था उसको भी लेके थे यमदूत, यमराज ने उसको भी पूछा भी तो कहां जाएगा पहले, नर्क में या स्वर्ग में। उसका भी हिसाब कहता महाराज ऐसा है मुझे वहां छोड़ दो जहां एक शर्त नर्क को जाती है एक स्वर्ग को, तो वहां क्या करेगा, चलो मैं दुकान खोल लूंगा और ग्राहक बहुत आएंगे, ग्राहक नर्क के भी होंगे स्वर्ग के भी, तो वह भी व्यापार करना चाहता है। तो ये व्यापार धन जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, जिनके लिए इकट्ठे करने का जब प्राण निकल गए और उतना ही तुम्हारे साथ देखना शक्ल बेशक्ल हो जाती है, क्योंकि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं ना तो वो शक्ल से डरावना बन जाता है, लेकिन जब विष्णु दूत आत्मा को ले जाते हैं फिर डरावना नहीं बनता, शक्ल और तो भी डरती है, भूत बन गया बड़ा बेकार लग रहा है। तो औरत जो सारी उम्र उसके साथ खाती कहीं जल्दी ले जाओ, वो भी रखने के लिए तैयार नहीं है, डरा रहा उसे, लड़के भी टाटा कर देंगे हैं, औरत भी एक मर गया तो मर पर उसकी अर्थी उठा के ले जाने लगे, यहीं की बात है पास की, ले जाने लगे। औरत कहती है अपने लड़के को, इसको बोल जो कर्जा करके गया मुका के जाए, इतना कर्जा से कर रखा है कौन मुकाएगा, सब बाप मुकाएगा, बोल उसको कर्जा मुका के जाए सर, तो मर गया। ये हालत है, तो किसी ने हमारा काम नहीं है, आंखें खोलो और कृष्ण की शरण में आओ, भक्ति को अपनाओ, टाइम बड़ा काम है, कब किसके प्राण पखेरू उड़ जाए कोई नहीं जानता, आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, बड़ी घटनाएं घटती। यही एक घटना घटी थी, एक कुछ 16 साल का लड़का सत्संग से बाहर सड़क पर खड़ा था, ट्रक ऊपर चढ़ गया, यही पास में ही थी ना घटना, पता नहीं देखो ब्रिजमोहन, उसका कोई रिश्तेदार था वो एमएलए का, पूरी हालत भाग गई, ट्रक वाला भाग गया था, पकड़ा नहीं उसको, कटी थी उसके टुकड़े इधर उधर से, क्या पता कि मैं घर नहीं पहुंचूंगा, किसी को कोई पता नहीं है। पदम पदम यद दिप्ताम ना तेषाम, हर कदम पर खतरा है हमें पता नहीं, इसलिए अगर कृष्ण की शरण होगी ना ये रक्षा करेंगे, बस जैसे अर्जुन की, जैसे प्रहलाद महाराज की है, ध्रुव महाराज की, मीराबाई की है, जैसे आपको रत्नावती माता कथा सुनाई थी थोड़ी, रत्नावती माता की, रत्नावती माता जो थी ही, वो लंबी कथा भक्तित्री बन गई, अभी राजा उसका जो पति है वो राजा उसे बोले देते तो बेइज्जती करा रही है हमारी, वजीर कहते हैं महाराज नाचती है साधुओं के बीच में, ये बस सारी बेइज्जती होगी हमारी, उसने बोला अच्छा, वो भी बड़े राजा की बेटी थी, बोला ऐसा करो इसको मार दो, ऐसे मार देंगे तो क्या जवाब देंगे, ऐसा करो कि पिंजरे से शेर खोल दो, इसके कमरे में शेर जाए, शेर मार देगा इसको, शेर खोल दिया, शेर खोल दिया तो रत्नावती माता जो रानी थी उसकी जो दासी थी उसकी गुरु थी, दासी से भक्ति सीखी उसने सारी, तो रत्नावती अपने भक्ति में लगी थी, भगवान की मूर्ति के सामने भक्ति कर रही थी, तो दासी ने बताया महारानी जी शेर आ रहा है, कहते शेर नहीं है तो भगवान नृसिंहदेव आ रहे, वो नहीं डरी आए तो मलाव महाराज विराज शेर बैठ गया, उन्हें उसकी पूजा की, आरती उतारी, फूल माला पहनाई, भोग लगाया, शेर ने भोग खाया, तो ये सब दृश्य उसका पति माधो सिंह और माधो सिंह का बड़ा भाई मान सिंह, माधो सिंह और मान सिंह वो दोनों देख रहे थे, ये तो चमत्कार है, देख रहे थे तो शेर जब खाक होकर जाने लगा उसने को पंजा मारा, उधर पीछे थे छोटे हुए बाकी जो बदमाश थे जिन्होंने छोड़ा था रानी दत्तराम सबको मार दिया गया, मार के जंगल में चला गया, देखो भगवान साक्षात रक्षा कर रहे, शेर के अंदर भी तो भगवान विराजमान है, या भगवान का हुक्म नहीं है शेर थोड़ा मार सकता है, लेकिन हमारा भरोसा कृष्ण के चरणों में नहीं है ना, हमारा भरोसा हमारे मन पर है, घूमने फिरने पर है, है? गुरु आज्ञा पालन नहीं करनी, मन मर्जी करनी, मेरा मन कहता है मैं घूमती फिरती रहूं, कहीं घूमते फिरते ऐसे का प्राण निकल गए तो फिर क्या करोगे, अगर भगवान की शरण में होंगे मंदिर में होंगे वहां प्राण निकलेंगे तो ध्यान भगवान के चरणों में जाएगा, लेकिन नहीं, बड़ा मन मन के अधीन है, सभी कृष्ण के अधीन, भक्ति माता के अधीन हो जाओ, तो मन की दासता छोड़ दो, मन तो तुला है हमको नर्क में ले जाने के लिए, और नर्क में यही साथ ये भी आएगा विद्वास मन, इसी को तरफना पड़ेगा, तो कहा है, जनक महीरा तुझे जो मिला है ये जमाने के काबिल नहीं है। जन्म ये गवाने के तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये
हर सांस माना अनमोल मोती है,
कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती एक सांस की। प्रभुपाद कहते हैं एक आदमी 100 साल का होगा मर गया, बड़ा बड़े घर से बड़ा अमीर था, तो करोड़ों रुपए लगाकर जो समय बीत गया उसमें से एक श्वास वापस ले सकता है? वो कहता मैं 10 करोड़ दे दूंगा श्वास वापस आ जाए, लड़के खर्च करेंगे, या एक श्वास उसमें डाल सकता है? वो प्रभुपाद कहते हैं टाइम इज मनी, अगर समय धन है तो हम देखें कितना धन हमने नष्ट कर दिया, अरबों रुपये नष्ट कर दिए ऐसे, इसलिए हम नष्ट ना करें, भक्ति करें। ये देवकीनंदन दास मन चंचल पर उधर नहीं जा रहा अभी, कहते मैं उधर जा रहा हूं, नोटों का चक्कर है, नोट बनाने हैं, नोट भी बनाओ, सेवा भी करता है वैसे, पर नोटों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, आदमी उन्हें भेज देता अपने यहां भी बिजली का काम करने के लिए, नोट बनाने हैं। अरे नोट बनाया हुआ है, भक्ति भी करो भगवान की, आया तो गुरु आश्रम में थोड़ा रहा एक आदमी, तेरा दिमाग चुराने लगे। ये बेचारा अपनी औरत से बहुत डरता है ना, वो जैसे एक डांड लगाई तो बस प्राण इसके खुश्क हो जाते हैं। मैंने कहा भी तू उसको जप करने के लिए कहते हैं आप कहो महाराज, ये नहीं कहता डरता भी करा, उसने जप शुरू किया, करती है भी नहीं, बंद तो नहीं किया, तेरी पिटाई तो नहीं करती कभी, बहुत डरता है उसको, जो कभी हो तो बस। और एक दिन मैंने बोल दिया उसको सामने, मैं तो किसी का लिया नहीं, मेरे को डांट लगाने लगी, मेरे को डांट लगाने लगी, एक जरा कुछ नहीं बोलता, क्या कहे। पहले स्त्री होती थी पतिव्रता, आज होंगे आजकल होंगे पुरुष पत्नी व्रता, पत्नी व्रता। एक बात सुना के फिर सत्संग को विराम देते हैं। एक सीधा साधा आदमी था, उसकी शादी हुई, शादी हुई तो पत्नी आई बड़ी तेज उसकी, आते ही सर बांध लिया उसने, हाय हाय बीमार हूं, और चेहरा उसको क्या पता बता है बीमार है या नहीं, उसका नाटक था उसका, हाय है करना उसने, उस बेचारे ने अपने लिए भोजन बनाना, उसको भी देना खाने के लिए, बर्तन बुर्तन धोने पर काम के लिए जाना, रोज तरीकों से ऐसा बना दिया, उन्होंने नौकर बना लिया अपने घर वाले को, ऐसा करती है, घोर नर्क में जाती है वो। ऐसा जब उसने कर लिया तो अभी क्या हुआ कि एक सामने बुजुर्ग घर में रहता था, वो सब तमाशा देखता था, जैसे वो गया सर से उसने जो बांध रखा होता है, हाय हाय करती थी, सब खोल खाल के पर बनाने में लग जाती, कभी कुछ बना रही है कभी कुछ बना, सारे दिन खाने का काम उसका, वो बेचारा बुजुर्ग तमाशा देखता रहा। उसने बोला भी इस गरीब के साथ अन्याय, और उसने बुलाया उसको, कहते देखो आपके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, तो क्या ये जो आपकी पत्नी है ना, कहते हाँ, वो कहते हैं ये घर से बीमार आई, इसको बीमार है बेचारी, कहते बीमार नहीं है ये, क्यों कि जब आप जाते हैं ना इसकी बीमारी खत्म हो जाती है, मैं देखता हूं सारे दिन खाती रहती है, कोई ना कोई बना रही, कोई ना वो खा रही है। अच्छा, तो मैंने सोचा घर से बीमार आई है, ماں کے گھر سے بیمار ہے، بیمار بالکل نہیں ہے، یہ بے وقوف بلاتی ہے آپ کو. اچھا وہ ٹائم پر کر دکان پہ جانا، اس دوسرے دن اٹھائی نہیں ہے، وہ سوچ رہی ہے جائے تو میں اپنا کھانے پینے کا کام شروع کروں. پنجاب کی بات ہے، پنجابن تھی وہ بھی پنجابی کا، یہ پنجابی بھی سیدھے ہوتے ہیں پر زیادہ تر پنجابی ٹیڑھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ڈوگرے پنجابی میں رشتہ نہیں کرتے تھے، ایسا لڑاکے ہوتے ہیں بٹ بول کرتے. تو کیا ہوا کہ لیکن وہ سیدھا تھا کہ سیدھے بھی دیکھے میں نے پنجاب میں لوگ اٹھائی نہیں. سوچنے لگے پھر کیا بات ہے، ایک ٹائم پہ اٹھتا تھا، ٹائم پہ جاتا تھا، بھوجن بناتا تھا، مجھے بھی کھلاتا تھا، آج یہ اٹھائی نہیں کام پہ. اس نے تھوڑا اس کو گھمایا تھا، پورا ہی گھوم گیا وہ، یہ تو شریر چھوڑ گیا، ایسا لگا شریر چھوڑ دیا، ناٹک کیا اس نے کہ یہ تو شریر چھوڑ دیا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، بس اس کو دفنانا دفنانا جلانا پڑے گا، تو میرے کھانے کا کیا ہوں، بھوکی مروں گی میں. دودھ آ گیا تو اس نے پھٹافٹ دودھ یا کھیر بنائی، کھیر پیتی گزارا کرنا پڑے گا، کھیر بنائی اور پینیے بنا دی. پینیے پنجاب میں بڑی بنتی ہے، پینیے پھٹافٹ تیار کر لیں، پہلے کھیر پی کے اور پینیے کھاؤں گی اور کیا کرنا ہے. ابھی بس کھیر کو پی لی اس نے، پی لی تو ابھی کہتی ہے اور تسی ہوں چل گئے سانو کچھ دسو، کہتی آپ چلے گئے میرے کو کوئی بتاؤ. پنجابی صاحب سمجھ گئے، وہ مراد ہونا تھا، وہ زندہ تھا، وہ سب دیکھ بھی رہا تھا کیا کیا نہیں ہے. وہ کہتا ہے پہلے کھائی کھیر، ابھی پینیا چکھو، پہلے کھیر کا پینیا لیے کہنا تیری ابھی مار مار کر اس لیے جائے گا پرسار پر دی جب پرسار کرتے ڈوگری بھاشا میں مار مار کے ڈنڈا ایسا چلایا اس نے تیری ایسی تیسی ویسے تو پھر ٹکونے کرتے ہی وہ تو کلیوگ کی بڑی گتی خراب ہوئی ہے، کلیوگ کی گتی اچھی نہیں ہے. تو کلیوگ کی اچھی گتی کرنے کے لیے بس بھکتی کا آشرے لو، سوئم بھکتی کرو، پتنی کو بھکتی کرواؤ، اسی میں جیون سفل ہے. اب لڑکی پہلے بولتی نہیں تھی، لڑکی کہتی میں نے شادی کرنی ہے، میں شادی اس سے کروا لیں، ہے خود ان پڑھ ہے، کوئی پڑھی پڑھی کچھ نہیں ہے، ایسا پتہ لگا میرے کو کہ اس کے لیے کال اکثر بھینس برابر ہے، کچھ نہیں پڑھی. میں نے بھائی اس سے کر دیتے ہیں، کہنے نہیں اس سے نہیں کرنی، میں کس سے کرنی، کون ڈھونڈے اس کے لیے. ابھی ایک تیارا کرنے کے لیے وہ کہتی میں نہیں کرنی، کہوں کس کے لیے، کہاں سے ڈھونڈیں گے. وہ کہتی کو پڑھا لکھا مل جائے، میں پڑھے لکھے کر دیں. ہاں وہ تو کر، پہلے لڑکی بولتی نہیں تھی کچھ بھی، آج اتنی لمبی زبان ہو گئی ہے، ٹائم خراب آ گیا، بڑا خراب ٹائم ہے. تو اس خراب ٹائم کو اچھا بنانا ہے ایسے سنتوں کی کرپا سے. یہ اوتاری پرش ہیں، بھگوان کے بھیجے ہوئے، میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ساتھ رہا، ایسے سنت نہیں ملیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بڑی شانتی کا انوبھو ہوتا ہے، جب وکیل آئے ہمارے سپریم کورٹ کے، کیسا لگا وکیل جی آپ کو یہاں پر، کہتے پرمانند وکیل جی، کہتے سکھانند تو پرمانند تو بھوک بند ہوتے، بھوک تو نہیں بند ہوگی. تو یہ شانتی سے سنت دیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سنتوں کا یہاں واس ہے، ان کی کرپا سے بھگوان بھی ہیں، بھگوان بھی بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ یہاں رکشا کر رہے ہیں. تو بس بھکتی کا آشرے لو، بھکتی کا پرچار کرو اور اپنے آپ کو درگتی سے بچاؤ، نہیں تو درگتی ہے سدگتی نہیں. انہیں شبدوں کے ساتھ آپ سب کا دھنیواد، بڑے پریم سے بولو ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام.
राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे बोलो जगत गुरु जन भगवान की। कोई प्रश्न किसी को आज खड़ा करके पूछ सकते हैं किसी भक्त को या किसी माता को। तो अभी तुलसी आरती होगी।